Shanti. तीसरा ग्रुप प्यूरिटी की रॉयल्टी की ब्राह्मण जीवन की विशेषता। सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता वो फाउंडेशन को जानते हो क्या है? सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता वो फाउंडेशन को जानते हो क्या है? प्यूरिटी। तो बाबा कहते हैं पक्का है कि प्यूरिटी ही फाउंडेशन है। तो सभी पक्के ब्राह्मण होना, प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख या प्यूरिटी की जैसे कोई रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख या प्यूरिटी की झलक से ही होती है और चेहरे व चलन से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब सदा संकल्प में भी प्यूरिटी हो। संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। तो ऐसे हो या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लेकिन प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो। तो फाउंडेशन पक्का है या कभी कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो। बाल बच्चा आ जाता है या अंश या वंश सब समाप्त, क्या समझते हो? तो बाबा पूछ रहे हैं कि सभी ब्राह्मण जीवन की विशेषता वो फाउंडेशन को जानते हो क्या है? प्यूरिटी। यह पक्का है कि प्यूरिटी ही फाउंडेशन है। तो सभी पक्के ब्राह्मण है ना, प्यूरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। जैसे कौन सा उदाहरण दिया, रॉयल फैमिली का बच्चा होगा तो उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख या प्यूरिटी की झलक से ही होती है और चेहरे व चलन से प्यूरिटी की झलक तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी प्यूरिटी हो। संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। खूबसूरती का आधार क्या है? पवित्रता। तो ऐसे है या कभी संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं परंतु ब्रह्मचर्य व्रत के बिना भी पवित्रता बिल्कुल नहीं। पवित्रता की जो का भवन उसकी जो बुनियाद है वो है ब्रह्मचर्य। लेकिन प्यूरिटी अर्थात किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो। अभी होली हंस बनेंगे तो फिर आगे जाके क्या बनेंगे? हिज होलीनेस। तो होली हंस अर्थात संपूर्ण पवित्र। किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव ना हो, आत्मा का शुद्धिकरण। तो फाउंडेशन पक्का है या कभी क्रोध को छुट्टी दे देते हो? पहले काम फिर यहाँ क्रोध। बाल बच्चा आ जाता है या अंश और वंश सब खत्म, क्या समझते हो? माताओं में मोह आता है, बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट है, बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट। कोई विकार का अंश मात्र भी नहीं, क्योंकि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, लेकिन छोटों छोटों से थोड़ा ज्यादा होता है। फिर बाबा बात कर रहे हैं मोह की। ज्ञान का सबसे पहला वार किस पे होता है? ज्ञान आते ही सबसे पहला वार मोह पर होता है, ममत्व पर होता है। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि बड़ों से तो मोह व लगाव जल्दी निकल जाता है, पर जो छोटे छोटे उनसे ज्यादा रहता है, पोतरे धोतरे या फिर बच्चे। जैसे लौकिक संबंध में भी बच्चों से इतना प्यार नहीं होगा जितना, अच्छा बच्चों के भी पोत्र धोत्रों से होगा। ऐसे विकारों के भी क्या है, ग्रेट चिल्ड्रन से प्यार तो नहीं है, ग्रैंड नहीं या ग्रेट लिखा है। फाउंडेशन प्यूरिटी है, इसलिए इस फाउंडेशन के ऊपर सदा ही अटेंशन रहे। सबका लक्ष्य बहुत अच्छा है, तो जैसा लक्ष्य है वैसे ही लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो, क्योंकि अनेक अपवित्र आत्माओं के बीच में क्या, अनेक संसार के अपवित्र आत्माओं के बीच में आप पवित्र आत्माएं बहुत थोड़े हो। तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को अपवित्रता को खत्म करना है तो कितनी पावर चाहिए? तो सदा चेक करो कि क्या चेक करो, अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, क्योंकि आपके जड़ चित्रों का भी सदा ही निर्विकारी कहकर गायन करते हैं, या किसकी महिमा करते हैं, आपकी है या भारतवासियों की है? बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल चेतन में बने तब तो महिमा हो रही है, यह पक्का निश्चय है कि हम ही है तो ब्राह्मण अर्थात प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले। प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, रॉयल्टी है, विशेषता है, सिक्योरिटी है। हिम्मत रखकर आगे बढ़ रहे हो और भी आगे से आगे बढ़ना ही है। उड़ती कला वाले हो, न कि चलने वाली कला में हो। कभी नीचे ऊपर होते हो? सदा फाइन है या कभी कभी फाइन है? समटाइम खत्म हुआ। अभी रूरियान में भी मैं तो आकर नहीं कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा रह गया है, नहीं। अभी क्या रूरियान करेंगे? ओके ओके कहने से ही देखो क्या हो जाता है, चेहरा मुस्कुराते हैं। और जब समटाइम कहते हो तो मुड़ जाते हैं आंखें, क्या हो जाता है, आंखें को नीचे हो जाती है। सदैव यह स्मृति में रखो कि अभी नहीं बनेंगे तो कब नहीं, अभी बनना है, पुरुषार्थ करेंगे देखेंगे, नहीं होना ही है। तो इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। तो कौन हो? प्यूरिटी की रॉयल्टी में रहने वाले हो। अच्छा, सभी स्वयं को फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं अनुभव करते हो, सदा फर्स्ट रहना और सदा ही औरों को भी फास्ट गति से आगे बढ़ाना है। तो क्या क्या सुना? हम्म, प्योरिटी ही बुनियाद है, फाउंडेशन है, और प्योरिटी ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है, स्पेशलिटी है, सिक्योरिटी है, आधार है, श्वास है, शोभा है, श्रृंगार है, सजावट है, नवीनता है, नॉवेल्टी है, और पब्लिसिटी है, ब्यूटी है, रियलिटी है, क्या है, सौंदर्य है, खूबसूरत, खूबसूरती का आधार ही पवित्रता है। पवित्रता अर्थात यहाँ बाबा ने कहा कि केवल क्योंकि संकल्प में भी थोड़ा सा प्रभाव ना, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो, यह है पवित्रता की परिभाषा। बाबा संकल्पों के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, एक है पवित्रता, पवित्रता बहुत बड़ी चीज है, उसमें एक जो है वो ब्रह्मचर्य है, परंतु वो एक जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस एक को अगर हटा लिया जाए तो ये इमारत गिर जाएगी। परंतु वो एक ही पवित्रता नहीं है, पवित्रता अर्थात सभी विकार अंश और वंश सहित समाप्त, बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट मोह के लिए बाबा ने कहा, तो ना काम हो वहां पर, ना क्रोध हो और ना हम हो, ये तीनों की बात बाबा कर रहे हैं। तो सभी पक्के ब्राह्मण है ना, उदाहरण दिया जैसे रॉयल फैमिली का कोई बच्चा हो तो उसके चेहरे से चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है। उसी तरह ब्राह्मण जीवन की परख किससे होती है, प्योरिटी की झलक से। संकल्प में भी यदि विकार है तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा, और चेहरे व चलन से प्योरिटी की झलक तब दिखाई देती है जब सदा संकल्प में भी प्योरिटी हो। तो फाउंडेशन पक्का है, इस फाउंडेशन को पक्का करने के लिए क्या करेंगे, जो कि मूलभूत आधार है, अगर इस फाउंडेशन को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता, बाकी सारे गुण आ जाए। परंतु यदि अपवित्रता है, अपवित्रता को छोड़ो, कहो अगर काम है, तो वो सारे जो दिव्य गुण है उनका कोई महत्व नहीं है। फिर भी अध्यात्म में उन्नति बिना पवित्रता के हो ही नहीं सकती, चाहे किसमें और बहुत सारी विशेषता है, वो लौकिक रीति से आगे बढ़ सकता है, यहां पर भी नाम मान शान मिल सकता है, परंतु जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है उसका आधार केवल और केवल पवित्रता ही है। अग्नि की तरह पवित्रता या ब्रह्मचर्य तुम्हारी धमनियों में स्पंदित हो, विवेकानंद ने कहीं कहा है, ये पवित्रता अग्नि की तरह तुम्हारी धमनियों में स्पंदित हो। जब तक ब्रह्मचर्य आत्मा धारण नहीं करती, अध्यात्म के सूक्ष्म रहस्य, अध्यात्म की सूक्ष्म तंतु बातें सार ग्रहण नहीं कर सकती, जब तक ब्रह्मचर्य को संपूर्ण तरह से धारण नहीं करती, तब तक चिंतन की वह सूक्ष्म धारा उत्पन्न ही नहीं होती है, वो केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। जब तक ब्रह्मचर्य को आत्मा धारण नहीं करती, तब तक स्मृति में वो शक्ति ही नहीं आती है कि जो ज्ञान को स्थिर कर सके अंदर, वो स्मरण शक्ति ही उत्पन्न नहीं होती जब तक ब्रह्मचर्य धारण ना हो तब तक। चाहे बाकी सब कुछ करती रहे आत्मा, सेवाएं निस्वार्थ भाव से करती रहे, भाषण देती रहे, ज्ञान सुनाती रहे, सब कुछ चालू है, परंतु अध्यात्म के सर्वोत्तम और जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म तत्व है उनको वो समझ नहीं सकती है। इसके लिए अध्यात्म जीवन का आधार ही ब्रह्मचर्य है, पवित्रता है। और वही बात बाबा भी कह रहे हैं, संकल्पों की पवित्रता, मनसा वाचा और कर्म न, हमेशा तीन कहा जाता है। यहाँ बातें चल रही है संकल्पों की पवित्रता, वृत्ति की पवित्रता, हमारे जो प्रकंपन है उसकी पवित्रता, हमारे जो बोल है उसकी पवित्रता। बोल में भी पवित्रता नहीं आ सकती जब तक संकल्प में ना हो। बाबा ने कभी कहा है तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। तुम्हारा एक एक शब्द प्यूरिटी से अप्लावित हो, भरपूर हो, उसमें जो निकल रहा है वो अंदर से निकल रहा है, जो निकल रहा है वो एक धारणा की अभिव्यक्ति हो रही है मात्र, इतनी तुम्हारी प्यूरिटी हो। प्यूरिटी गीता में लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, सब वस्तुओं को पवित्र करने में मैं वायु हूं। पवित्रता का उदाहरण वायु दिया हुआ है, क्यों? वायु में ऐसी क्या खासियत है, इस अनिल में, इस वायु में क्या ऐसा है, सब तरफ है। और उस वो पहले तो गतिमान है, वो गतिमान है। नहीं, वाइब्रेशंस नहीं कहा जा सकता है। वाइब्रेशंस अर्थात क्या, उसमें बताइए। और एक बहुत जबरदस्त एक गुण है वायु में, गीता में लिखा गया है कि सभी पवित्र वस्तुओं में वायु मैं हूं। एक अध्याय है जिसमें लिखा हुआ है जो भी संसार की महानतम चीजें है वो मैं हूँ, इसमें वो मैं हूँ, इसमें वो मैं हूँ, क्षत्रियों में अर्जुन मैं हूँ, सभी पर्वतों में हिमालय मैं हूँ, ऋषियों में नारद मैं हूँ, जो जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं वो मैं हूँ। पवित्रता का संबंध वायु से जुड़ा हुआ है, क्यों? वायु कहीं भी ठहरती नहीं है, वायु का किसी से लगाव नहीं है, वायु का किसी में मोह नहीं है, वो आज यहाँ है कल वहां है, उसमें प्रवाह है, कोई आसक्ति नहीं है, सब जगह फैलती फैली हुई है, कहीं एक जगह नहीं ठहरती है। इसके लिए सन्यासियों का भी क्या नियम होता था, तीन दिन से ज्यादा एक जगह नहीं ठहरते थे। क्यों? क्यों तीन ही दिन उन्होंने निश्चित किया? महावीर ने अपने सन्यासियों को कहा कि तीन दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुके। तीन दिन का क्या महत्व है? मनोवैज्ञानिकों ने इस पर विश्लेषण किया और देखा किसी भी नए स्थान पर एडजस्ट होने के लिए तीन दिन लगते हैं। नई जगह गए तो तीन दिन ढंग से नींद नहीं आती है, चौथे दिन फिर थोड़ा ऐसा लगता है अपना कमरा है, अपनी जगह है, अपना स्थान है, तीन दिन में अपनापन आ जाता है। ये अपनापन आना ही ब्रह्मचर्य का खंडन है।
तीन दिन में संस्कार पक्का हो जाता है,
पक्का हो जाता है संस्कार, और लगने लगता है ये मेरी चीज है। जब भी जैसे ही सन्यासी को लगे कि ये मेरा घर है, मेरा स्थान है, ये मेरे लोग है, बस वहीं से मोह चालू होता है। और जहां मोह आ गया वही ज्ञान पर पहला आघात है। मोह और ममत्व उत्पन्न होते ही वहां से सब कुछ माया आना चालू होती है। तो वायु जो है वो कहीं पर भी नहीं ठहरती, आज यहाँ कल वहां, आज वहां कल वहां। तो पवित्रता के लिए वायु से उसकी तुलना की गई है। एक दूसरी पवित्रता की तुलना की गई है
पानी।
नदी से, पानी से नहीं,
नदी
पानी नहीं, नदी। नदी बहती रहती है, जो बहता रहता है वही पवित्र रह सकता है। जिसने ठहरने का प्रबंध किया, रुकने का प्रबंध किया, वो तालाब बनेगा, उसमें दुर्गंध और सड़ांध उत्पन्न होगी, परंतु जो बहता रहता है उसमें ये सब चीजें नहीं हो सकती है। वो निरंतर बहता है, कहीं पर भी ठहरने की उसकी मंशा नहीं है, कहीं पर भी ठहरने की उसकी इच्छा नहीं है, वो बस चल रहा है, उसे जाना है, उसे तो लक्ष्य है। एक जो कहा ना यहाँ पे, अगर लक्ष्य दिया जाए तो लक्षण स्वतः ही आ जाएगी। उसका लक्ष्य है सागर से मिलना। वो कहाँ रुके, उसके मन में ये संकल्प नहीं है कहीं जाकर तालाब बन जाऊं और किसी गांव का कल्याण करूं। जिसको आना है वो आएगा मेरे पास, रुकने को वो राजी नहीं है, क्योंकि उसके पास लक्ष्य है, उसे पहुंचना है, उसकी गति, उसका रुख सागर की तरफ है। तो दूसरा उदाहरण है पवित्रता का, नदी, तो नदी भव। बाबा ने तो कहा है तुम ही नदियां हो, वो दूसरी बात है, यहाँ दूसरी बात चल रही। तो नदी का किसी में कोई आसक्ति नहीं, किसी में कोई मोह नहीं, वो बस चल रही है। किसी कहीं कहीं रुक कर किसी का कल्याण नहीं करना है उसे, अगर रुक जाए तो ये जो रुकावट है यही मृत्यु है उसके लिए, वो दुर्गंध उत्पन्न होना चालू हो जाएगा उस तालाब से। इसके लिए संपूर्ण पवित्रता अर्थात लगाव मुक्त स्थिति, संपूर्ण पवित्रता अर्थात मोह मुक्त स्थिति, संपूर्ण पवित्रता अर्थात कहीं भी रुकना नहीं है। जैसे पता चले किसी में आसक्ति लगाव मोह उत्पन्न हो रहा है, वहां से ही माया की प्रवेशता शुरुआत हो जाती है, वहां से ही माया आना चालू हो जाती है जीवन में। इसके लिए स्त्री पुरुष वस्तु वैभव ये जो भी है सेवा उनकी सबकी करनी है, परंतु लगाव मुक्त स्थिति में सेवा करनी है, अनासक्त भाव से सेवा करनी है, विरक्त होकर सेवा करनी है सबकी, अंदर में वो वीतराग भाव हो। संकल्प में थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है, बाबा पूछ रहे हैं, संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो तो ऐसे हो या कभी संकल्प में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है? ब्रह्मचर्य अर्थात वह चर्या जो ब्रह्म जैसी हो, ब्रह्मचर्य अर्थात वह चर्या, भक्ति में ब्रह्म ही ईश्वर है तो वह चर्या जो ईश्वर की चर्या है, वह चर्या वह उस तरह से व्यवहार करना, उस तरह से जीवन यापन करना जो कि वो ऐसा व्यवहार जो ईश्वर का व्यवहार है, ये एक ब्रह्मचर्य का अर्थ है। ब्रह्मचर्या, जीवन चर्या, दिन चर्या, रात्रि चर्या, तो रात्रि चर्या या दिन चर्या, चर्या अर्थात किस तरह से जीवन बिताया जा रहा है, व्यवहार कहो जिसको या आचरण कहो, दिन दिन भर में जो कुछ कर रहे हो क्या चर्या, चर्या वो चर्या नहीं है, वो चर बीच में एक शब्द आता है उसके, चर्या ऐसा कुछ है, वो केवल चर्या नहीं है। पा करके गल गए। वैसे तो देखा जाए तो जो प्रेमी होता है, पागल तीन प्रकार के होते हैं, एक तो वो पागल जो पागल है, दूसरा वो जो कवि है, तीसरा है जो प्रेमी है। जो प्रेमी होता है वो नशे में होता है हमेशा, चाहे वो संसार के किसी व्यक्ति का प्रेमी है या फिर वो ईश्वर प्रेमी है, ईश्वर उन्माद। ऐसे जितने जैसे रामकृष्ण परमहंस के जीवन में दिखाया ना, वो एक अलौकिक उन्माद में रहते थे, जैसे कोई पागल या कोई विक्षिप्त है, लोग तो पागल ही कहते थे उनको, क्योंकि उन्हें तो खबर ही नहीं थी संसार में क्या हो रहा है, तो वो भी बात है। तो यहाँ बात चल रही है संकल्प, हाँ, ब्रह्मचर्य अर्थात ऐसी चर्या, इसमें कोई संघर्ष नहीं है ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य अर्थात एक सहज भाव है, वो जो ऐसी चर्या को पकड़ लिया कि शरीर के जो चक्र है उसके जो न्यूनतम चक्र है उसमें से ऊर्जा अभी नीचे प्रवाहित नहीं हो रही है, ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हुई है, अधोगामी नहीं, ऊर्जा अधोगामी जाए इसमें कोई पाप तो नहीं है भले, परंतु अध्यात्म में अगर वो जाती रहे तो उन्नति नहीं हो सकती। ब्रह्मचारी अर्थात वीर्यवान, ब्रह्मचारी अर्थात शक्तिशाली आत्माएं, वो शक्ति तभी प्रकट होगी, जैसे पिछले संडे की मुरली में था ना, वो ऊर्जा जो है वो रूपांतरण हो जाए, वो तीन को याद करो तो पांच परिवर्तन हो जाए, काम शुभ भावना में परिवर्तन हो गया है, काम परिवर्तन होकर अब वार के रूप में नहीं परंतु विश्व सेवाधारी बन गई है आत्मा। तो ये रूपांतरण हो जाए, ताकि ब्रह्मचर्य जो है वो थोपा हुआ अगर है, वो दमन किया हुआ अगर काम वासना है तो निकलेगी बाहर, उसका ऐसा रूपांतरण हो जाए कि उसकी फिर आवश्यकता ही नहीं है। जो संसार कहता है कि इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अगर इसको भोगा नहीं गया तो व्यक्ति पागल होता है, इसके लिए सारा संसार उसके पीछे है। परंतु जिसने अध्यात्म मार्ग चुन लिया है उसके लिए उस चीजों की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ब्रह्मचर्य धारण करते ही मस्तिष्क के ऐसे कुछ केंद्र होते हैं जो खुल जाते हैं कि व्यक्ति स्वतः ही उस अतिंद्रिय सुख में, उस अतिंद्रिय आनंद में रहने लगता है। उसके लिए इन इंद्रिय सुखों की, इस इंद्रिय सुखों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो उसके सामने तुच्छ नजर आते हैं। और वो तुच्छ तभी नजर आएंगे जब व्यक्ति इस अतिंद्रिय सुख को चखेगा, स्वाद उसकी एक बार आ गई उसके सामने ये नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए ब्राह्मण जीवन में आना अर्थात सबसे पहली जो कंडीशन है वो ब्रह्मचर्य है। पहले सबसे पहला जो फाउंडेशन है वो पवित्रता है, क्योंकि बिना फाउंडेशन के अगर ज्ञान वैसे ही ले लिया केवल, तो वो ज्ञान में तो रस है परंतु व्यक्ति के अंदर जो काम ऊर्जा है उसका क्या करेगा, वो कहाँ जाएगी, वो कहीं ना कहीं मार्ग ढूंढेगी और विक्षिप्तता उत्पन्न करेगी व्यक्ति में। जब तक ब्रह्मचर्य धारण नहीं होता है वो ऊर्जा रूपांतरण हो ही नहीं सकती, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं निकास ढूंढेगी, आउटलेट कहीं ना कहीं से निकलने का प्रयत्न करेगी, वो एग्जिट मार्ग ढूंढेगी, कहां जाऊं। अगर कहीं से ना मिले तो वो भोजन के द्वारा भी प्रकट होगी, सारा आसक्ति उस पे निकलेगी, कहीं ना कहीं से वो निकलेगी। उसमें नहीं मिला तो वो नाम मान शान के पीछे जाएगी, उसके वो नहीं मिला तो वो घूमने फिरने के पीछे जाएगी, वो नहीं मिला तो ज्ञान योग छोड़कर जो भी चीजें है वो सब में इंटरेस्ट उत्पन्न होगा उसका, उसका अलग अलग इससे आउटलेट होगा कहीं ना कहीं। इसके लिए ये इस ऊर्जा को प्रिजर्व करके रखना है। ये जो ऊर्जा है ये हमारे काम की ऊर्जा है, इसको दबा, ये जो कुंडलिनी शक्ति जो कहते हैं ना, वो क्या है, कुंडलिनी जागरण, सारे चक्र खुल जाते हैं उसमें। यहां तक कहते हैं एक अलग प्रकार की नाड़ी होती है, मेधा नाड़ी, वो उत्पन्न होती है ब्रह्मचारी में, कि जिस नाड़ी के आधार से वो जो चाहे वो याद रख सकता है, उसकी स्मरण शक्ति अति तीव्र और शक्तिशाली हो जाती है, जो कि अध्यात्म मार्ग में सबसे ज्यादा आवश्यक है। संसार की सूचना एकत्र करने में नहीं, अध्यात्म के तत्व को जानने में, वो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी मास्टर बनने में नहीं, वो भी एक विक्षिप्तता ही है, वो ये मार्ग में वो सब चीजें नहीं है, ये है अध्यात्म के अनुभव करने के लिए। ये ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के जो भी अनुभव है वे अति सूक्ष्म है, स्थूल बुद्धि उन्हें अनुभव ही नहीं कर सकती है, उसे पता ही नहीं चलता ये क्या है, ये मुरलियां क्या चल रही है और क्या इसमें बातें आ रही है, केवल शब्द है वो बस, वो उसके पीछे भाव क्या है वो, हमें तो भावातीत अवस्था को पाना है, शब्द नहीं, शब्दातीत, भाव भी नहीं, भावातीत, वो प्यूरिटी से ही संभव है। तो सारी हमारे ज्ञान का आधार, हमारे जीवन का आधार, इस लाइफ का आधार प्यूरिटी है। तो बाबा कह रहे हैं कि संकल्प में भी वह खंडित ना हो, और उसका भी आधार जितना हम हमारी ज्ञान में रुचि हो, योग में रुचि हो, जैसे कल कह रहे थे ना कि योगी ही सर्वश्रेष्ठ है संसार में, पर वो योगी जिसका सब कुछ सहज हो, संघर्ष ना हो उसमें, जो संसार के जो लोग हैं वो संघर्षरत है, उनमें लड़ाई है, एक विरोध है, पर यहाँ अध्यात्म ब्रह्मचर्य अर्थात इतने ऊपर निकल गए हम कि वो चीजें अब आकर्षण, अनिच्छा का भाव उत्पन्न हो गया है उसके प्रति, इस देह, देह का आकर्षण, देह का स्पर्श, देह का सौंदर्य लावण्य, अनिच्छा का भाव उत्पन्न हो गया है उसके प्रति, उसे देखने की कोई इच्छा नहीं है, देखना ही चाहता है व्यक्ति इस देह को, सबसे बड़ी इच्छा उसमें वही है, विपरीत लिंग, देह को देखने की इच्छा है। यह अति सूक्ष्मतम गहनतम अभिप्सा उसके अंदर है कि देह को देखे, देह को देखने मात्र से ही काम की तृप्ति होती है, व्यक्ति काम की तृप्ति कैसे करता है? जिसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया वो कैसे करता है? कैसे करता है? देखने से, बातचीत करने से। क्योंकि ब्रह्मचर्य धारण कर लिया तो वो सब चीजें नहीं कर सकता, तो वो इस तरह, क्योंकि वो आउटलेट कहीं ना कहीं से निकलती है। ये निकलना भी तभी होता है जब श्रेष्ठ साधना नहीं हो रही है। अगर श्रेष्ठतम साधना है तो उसको निकलने का कोई मार्ग ही नहीं है, उसको इच्छा ही नहीं है ये सब चीजें। अनिच्छा का भाव, इच्छा क्या है, उस इच्छा से भी अविद्या, ऐसी अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य है। जो आज बाबा ने कहा ना, देवताएं जो है उन्हें तो अपवित्रता का ज्ञान ही नहीं है, और दूसरा जो संपूर्ण पवित्रता अंदर भरी है तो उसे बाहर भी पवित्रता ही नजर आती है। हमें अभी तक भी अगर अपवित्रता दिख रही है दूसरों में तो ये भी एक संकेत है कि अभी भी हमारे अंदर अपवित्रता है। जैसे पिछली बार एक उदाहरण दिया था ना, रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य अति श्रेष्ठ एक ब्राह्मण, अति श्रेष्ठतम भक्त, सुबह सुबह मंदिर गया और मंदिर की परिक्रमा कर रहा है, इतने श्रेष्ठ भाव मन में, कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत हृदय, और अमृत वेले का समय वो थोड़े से बात का, और उसी बीच में परिक्रमा करते करते एक चांडाल स्त्री बीच में आ जाती है, तो जो मन में जो एक पवित्र भाव रहता है तुरंत वहां विष उत्पन्न होता है उसके, कि ये कहां से बीच में आ गई। वो भी भक्ति में तो ऐसा दिखाया है कि वो श्री कृष्ण ही उस स्त्री का रूप लेके सामने आ जाता है, तो वो कहता है कि ये चांडाल स्त्री हट मेरे मार्ग से। तो वो स्त्री कहती है, अच्छा इस मंदिर के प्रांगण में तो चारों ओर पवित्रता ही है, मैं अपनी पवित्रता को कहां हटाऊं वो बताओ। वो ऐसा प्रश्न पूछती है उससे कि अगर सब जगह तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है और उसकी पवित्रता चारों ओर है तो मैं अपनी अपवित्रता को लेकर कहां जाऊं वो तुम बताओ अब। तो एकदम उसकी आंख खुलती है जैसे कि मैंने ये क्या कह दिया इसे, मतलब मेरे अंदर अभी भी अपवित्रता, इसके लिए तो मुझे उसमें अपवित्रता दिख रही है, नहीं तो वो चाहे कोई भी स्त्री हो, है तो शुद्धतम आत्मा ही, अगर देखा जाए ज्ञान की दृष्टि से ही है तो सभी पवित्र आत्मा ही है, भले अभी संस्कार के वश है जो भी है, तो उसकी जैसे कि ऐसी आंख खुलती है और वो उससे फिर क्षमा मांगते हैं, और उसको ये ज्ञात होता है कि मेरे अंदर अभी भी अपवित्रता, इसके लिए तो दिख रहा है। हमारी अपवित्रता की वो लेवल, वो प्यूरिटी पहुंचे कि हमें फिर किसी में कोई अपवित्रता ही ना दिखे। ये भाव ही संपूर्ण पवित्रता है कि जिसमें हमें ये लगे ये भी शुद्ध आत्मा, ये भी स्वयं समान में स्थित हो जाना, ये तो बहुत ऊंची स्थिति है, परंतु उसी समान से सर्व को देखना कि ये सभी महान आत्मा है, ये सभी देवकुल की आत्मा, ये सभी पवित्रता पवित्र आत्मा है, ये पवित्रता की संपूर्ण। तो सबसे पहले यहाँ बाबा बात कर रहे काम, फिर क्रोध, और फिर बॉडी कॉन्शियसनेस की अटैचमेंट, जिसे बाबा ने कहा मोह। पवित्रता आते ही मोह टूट जाता है, पवित्रता आते ही क्रोध को जाने में फिर भी शायद समय लग सकता है, क्योंकि क्रोध का अपना एक वेग अलग मार्ग है, उस परिस्थिति अनुसार उत्पन्न होता है। 10 साल किसी ने क्रोध नहीं किया, वो सोचता है कि क्रोध छूट गया, पर अचानक एक दिन आ जाता है। हर एक की एक एक विश्व विजयी सेना है, कार्य बहुत बड़ा है, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ जीत लिया, परंतु लक्ष्य है कहां ना आगे। लक्ष्य अगर श्रेष्ठ है तो लक्ष्य ना जाएगी। जिसने अगर ये सोच ही लिया कोई रेस होने वाली और उसमें मुझे जीतना ही है 1 महीने पहले से, तो 1 महीने पहले से सारी तैयारियां चालू हो जाएगी, क्योंकि लक्ष्य सामने है। अब अगर वैसे ही चलो रेस में भाग तो लेते, दौड़ने वाली मैराथन हुई थी नहीं यहाँ पे, तो जिसने 1 महीने पहले से ही मीना सिस्टर तैयारी कर रखी थी उनको कुछ ना कुछ तो बख्शीश मिलेगा जरूर, पर जो ऐसे ही चले गए और वैसे ही चले गए उनको कहा, सबसे पहले तो मेंटल पिक्चर तैयार करनी पड़ेगी, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मैं हूं। तो अगर लक्ष्य श्रेष्ठ है तो स्वतः ही लक्षण आएंगे। जो लोग घूमने फिरने और खाने पीने में गुजार रहे वो आत्मा फिर प्रैक्टिस में लगाएगी वो समय, क्योंकि उसके सामने लक्ष्य है, बाकी के सामने नहीं। जैसे वो लौकिक का वैसे ही अध्यात्म का, यहाँ पर भी लक्ष्य अति श्रेष्ठ हो, संपूर्ण पवित्रता का लक्ष्य जब तक नहीं रखा जाए वो लक्षण आएंगे ही नहीं। चाहे हमारी कैसी भी स्थिति हो, कितने भी काम विकार और क्रोध और लोभ अभी है, फिर भी लक्ष्य सदैव श्रेष्ठ रखना है। दुनिया में इतनी अपवित्र आत्माएं और आप इतने थोड़े, बाबा कह रहे हैं। तो थोड़ी सी पवित्र आत्माओं को, अपवित्रता को खत्म करना है, इतनी आत्माओं को इतना बड़ा कार्य करना है, तो कितनी पावर चाहिए? तो सदा चेक करो कि अपवित्रता का अंश मात्र भी ना हो, वो स्वप्न में भी ना हो, वो संकल्प में भी ना हो, वो भावनाओं में भी ना हो, वो दृष्टि में भी ना हो, वो चलायमान, कल की मुरली में भी था ना, सारी दृष्टि संसार में क्रिमिनल आए, सबकी क्रिमिनल दृष्टि है। क्रिमिनल दृष्टि अर्थात देह की दृष्टि, क्रिमिनल दृष्टि अर्थात देह को देखना, देखने से तृप्त करना स्वयं को। अगर देखना ही है तो देह के वास्तविक स्वरूप को देखो, फिर क्या होने वाला है इस देह की, क्या गति है इसकी, देह क्या है उसमें। बाबा ने कहा जानवरों को भी काम में आती है देह, ये तो पुरानी सड़ी हुई खाल है, कल भी कहा सड़ी हुई देह, इसको भूल जाओ। क्या है इस देह में, कितनी कितना आकर्षण है इस देह का, पता नहीं, समझ में नहीं आता है कैसे छूटे इस देह के आकर्षण से। इस देह के आकर्षण को बढ़ाने वाली जो भी उत्तेजना है, पहले तो उनको हटा देना पड़ेगा। चाहे वो कोई कहते हैं हम खाली न्यूज देखते हैं टीवी में, पर उस न्यूज के बीच में एडवर्टाइजमेंट में भी आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें जो है दिखता है वो 3D है। पढ़ी हुई किताब भूल जाएगी क्या पढ़ा 10 साल पहले, पर जो सीरियल, जो मूवी, जो सिनेमा, जो वीडियो 10 साल पहले देखा हुआ है, क्योंकि वो 3D है, उसमें चलता फिरता है, आवाज भी है, साउंड भी है, मूवमेंट्स भी है, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और व्यक्ति वही ग्रहण करता है जो सबसे, जिसको संसार ने, नियम मर्यादाओं ने कहा है इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है, वही उसमें से देखता है और वही सबसे पहले ग्रहण करता है। उसमें 100 अच्छी बातें थी, वो ग्रहण नहीं करता है। तो बाबा ने तो कह दिया जरूरत नहीं है तुमको ये सब कुछ भी करने की, क्योंकि उसमें उत्तेजना है। काम को बस उत्तेजना चाहिए, ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर मिल गया कि वो संतप्त हो जाता है, प्रज्वलित हो जाता है और व्यक्ति को नष्ट कर देता है, और उससे फिर निकलना बहुत मुश्किल है। एक बार का आया हुआ संकल्प, ऐसा भी नहीं कि काम का संकल्प एक बार आया और आत्मा उससे मुक्त हो गई। वो संकल्प यदि आया, उसमें इतनी तीव्रता, इतना वेग और इतना फोर्स होता है कि वो कई दिनों तक चलता है उसके साथ, उससे वो मुक्त नहीं हो पाता है। ज्ञान और योग में वापस आ जाने के लिए कुछ समय लगेगा और उतना समय गया। इसके लिए संकल्पों की चेकिंग, संकल्पों पर निगरानी, ये हमारा लक्ष्य है। इसके लिए वो ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे कि उत्तेजना उत्पन्न हो, ऐसी कोई चीज देखनी नहीं है, सुननी नहीं है जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो, ऐसी कोई चीज खानी नहीं है जिससे उत्तेजना उत्पन्न हो। अति तीखा, खट्टा मीठा, चटपटा, ये सब ब्रह्मचर्य के विरुद्ध में, इससे इंद्रिया कभी भी शीतल शांत नहीं हो सकती और ही उत्तेजना उत्पन्न होगी। अति घी और अति तेल और ये जो भी बना रहा है, ये सब ब्रह्मचर्य के विरुद्ध में। वो भोजन सबसे महत्वपूर्ण है, अगर वो अनुत्तेजना पूर्ण हो, उसमें खाने से कोई उत्तेजना उत्पन्न ना हो,
बिना ना हो, बिना।
जगदीश भाई कहते हैं ना, थोड़ा था वो एक चैप्टर है पूरा एक किताब में, मिर्च और मसाले के ऊपर, जगदीश भाई का। वो कहते थोड़ा सा ही तो लेते, जगदीश भाई ने बोला अरे थोड़ा थोड़ा लेते ही हथौड़ा लगेगा। तो क्या देख रहे है, क्या सुन रहे है, क्या खा रहे है, खाना कान से खाना, आंख से खाना, सब खाना आ जाएगा उसमें, सारा खाना, सब प्रकार का जो भी ग्रहण किया जा रहा है वो भोजन है, वो सारा ही शुद्ध हो, सारा ही पवित्र हो, तो ही ये पवित्रता की धारणा होगी, नहीं तो ये केवल एक मियर ड्रीम, केवल एक सैद्धांतिक बात है कि होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। बाबा ने कहा है जो योगी होंगे वो 2-3 दिन भी भूखे रहेंगे तो उन्हें कोई परवाह नहीं होगी, मस्ती में होंगे। साकार मुरली है बाबा की, दाल रोटी बोला है, देखा बाबा ने, उसमें कोई उत्तेजना नहीं है। परंतु अगर कोई दाल मिल जाए और उसको फिर प्रोसेस और फ्राइड और मसाला और तेल वेल डाल के अच्छा बना दे, तो फिर उसमें उत्तेजना है।
अच्छा
अच्छा थोड़ी बनेगी, वो तो खराब
बनेगी। अच्छा जगदीश भाई ने उसी लेख में लिखा हुआ है, अगर ऐसा भोजन जो ब्रह्मा बाबा स्वयं नहीं खाते अगर उसको स्वीकार करो तो वो नहीं खाएगा, तुमको खाना है तो बिना भोग के तुम खा लो, परंतु वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। भोग में होती है हा? दादियों का भोजन देखा क्या है? जानकी दादी का भोजन देखा है किसी ने? शायद खा नहीं सकेंगे अगर सामने आ जाए तो, कुछ नहीं होता है उसमें, अन्य कोई उत्तेजना ही नहीं है उस भोजन में। क्या समझू? जितना उत्तेजना वाला होगा ये करने वाले कैसे योगी बन सकते बताओ? अति स्पाइसी और अति
किचन में मसाला तेल अकल कटहर की सब्जी थी, मैंने देखा सब लाल 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 तेल 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 लाल लाल लाल
हेमोग्लोबिन होता है वो
राशि कटहर।
उत्तेजना जितना ज्यादा होगा,
बात यहाँ ही है, ये जनरल अन्न है।
ओम शांति।